जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Everybody, loudly. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Prabhu Pada. जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग सीधे बैठकर एकदम दोनों हाथ ऐसे जोड़कर हृदय से पुकारना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। 15 जनवरी 2019 इस साल का पहला तो त्योहार है ना, मकर संक्रांति। सब लोगों को किसकी याद आती है मकर संक्रांति? मतलब हाँ, गुरु की याद आना अच्छा है, लेकिन सबसे पहले भीष्मदेव की याद आनी चाहिए, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की याद आनी चाहिए, और उसके बाद में कृष्ण भगवान जो पतंग उड़ाते थे उनकी याद आनी चाहिए, क्योंकि इस दिन सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। हर महीने में सूर्य अलग राशि में प्रवेश करता है, ऐसा नहीं कि केवल साल में एक बार प्रवेश करता है। हर महीने में संक्रांति होती है। संक्रांति का मतलब है संक्रांति, यानी सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश, एक राशि से निकलकर वो दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो उसको संक्रांति कहते हैं। लेकिन मकर संक्रांति इसलिए विशेष है क्योंकि मकर संक्रांति में उत्तरायण शुरू होता है। और उत्तरायण का मतलब क्या है कोई जानता है? ये हमारी धरोहर है, ये सब नॉलेज जो है ना वो हमारी पूंजी है, किसी विदेशी को मालूम नहीं है। ये सब हमारे वेदों का धन है और हम लोग ही उसको भूल गए आज। जो हम लोगों को दूसरों को पढ़ाना चाहिए वो हम खुद ही भूल गए। तो उत्तरायण का मतलब यह है कि सूर्य ऐसी यात्रा करता है कि कुछ समय वो दक्षिण की ओर जाता है। आप देखेंगे ना, ये पूर्व दिशा है, तो कुछ महीने में सूर्य यहाँ पर उगेगा और यहाँ पर अस्त हो जाएगा, उसके बाद में वो यहाँ पर उगेगा फिर यहाँ अस्त हो जाएगा, फिर कुछ दिन कुछ समय वो इधर आएगा और इधर से अस्त हो जाएगा। ये भी पूर्वी दिशा है ना पूरा, लेकिन ये पूर्व दिशा में एक जगह उत्तर है एक जगह दक्षिण है कि नहीं? अगर ये पूर्व दिशा है तो ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। तो वो उत्तरायण यानी उत्तर की ओर अभी दक्षिण तक चला गया वो आज, अभी इसके आगे वो दक्षिण में नहीं जाएगा, उसके आगे वो उल्टी यात्रा शुरू करेगा उत्तर की ओर। तो वो आज शुरू हो गया है, यानी कि आज वो सबसे दक्षिणतम जगह में है पूर्व दिशा में, और धीरे धीरे वो आगे आगे बढ़ेगा इसे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जून जुलाई में जो वो एकदम उत्तर के चरम सीमा में पहुंचेंगे और वहां से फिर वो उल्टी यात्रा शुरू करेंगे, उसको कहते हैं दक्षिणायन, यानी दक्षिण अयन, दक्षिण की ओर सूर्य की गति होगी। तो उत्तरायण का महत्व यह है कि उत्तरायण से ज्ञान, प्रकाश, उत्साह, शुभता, ऑस्पिशियसनेस, पावित्र्य, इसका निर्माण होता है। और उत्तरायण के दक्षिणायन के शुरू होने तक जो समय है इसको उत्तरायण कहते हैं, उसमें जो भी अपना शरीर त्यागता है अगर वो भगवान का भक्त है तो वो ऊपर की ओर उसकी गति होती है, जिसको हम कहते हैं सदगति। हम कहते हैं ना कोई मर गया तो अच्छा आत्मेला सदगति लाभ हो, आप पूछिए लोगों को, वो जो मैसेज लिखते हैं ना उनको पूछिए कि सदगति का मतलब क्या होता है। ये सब लोग लिखते हैं इसलिए हम भी लिखते हैं, सब लिखते हैं अच्छा आत्मेला शांति मिलो, हम भी शांति मिलो। तो आत्मा की शांति का मतलब क्या है, क्या मिलो, क्या मिलना चाहिए उसको, ये भी हमको पता नहीं है। सब ऐसा रूटीन हो गया, अभी सब डायलॉग हो गए। जो कलाकार होता है नाटक में ना, उसको डायलॉग दे जाते हैं, उसको खाली बोलना है, डायलॉग का अर्थ समझ में आए ना समझ में आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ऑडियंस का काम है समझना, उसको खाली बोलना है। ऑडियंस समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी चलेगा, मनोरंजन हो गया ना, बस हो गया। तो क्या डायलॉग शब्द कौन से उपयोग किए हैं कोई उसका मतलब नहीं है। तो अभी आत्मा के सदगति का मतलब क्या है, तो उसके लिए आत्मा क्या है पहचानना पड़ेगा आपको। संक्षेप में आत्मा भगवान का अंश है, और संक्षेप में आत्मा का निवास स्थान भगवान के पास है, जैसे पिता पुत्र पुत्री का स्थान माता पिता के पास में होता है, विवाहित स्त्री का स्थान पति के पास में होता है, वैसे आत्मा का स्थान भगवान के पास होता है। वो छूट कर वो यहां पर आया है, तो सदगति का मतलब है कि दोबारा वो उस दिशा में जा रहा है, ये नहीं कि पहुंच गया है। सदगति मतलब जाना है उस तरफ तो उसी तरफ उसको रास्ता मिले, इस तरफ ना मिले, उसको सदगति कहते हैं। भगवान की ओर की गति को सदगति कहते हैं। और सत का मतलब क्या है, भगवान जो चिरंतन है, इटर्नल बोलते हैं ना उसको, शाश्वत, अमर, चिरंतन, उसको सत कहते हैं। और सत गति यानी सदगति, सदगुरु यानी जो सत्य की ओर आपको ले जाएंगे वो सदगुरु, सदगति यानी जो सत्य यानी भगवान की ओर ले जाएगा वो सदगति। तो हम प्रार्थना करते हैं कि वो गुजर गया तो उसको सदगति प्राप्त हो। शांति का मतलब क्या है, शांति का मतलब कोई विकार ना बचे मन में, काम वासना क्रोध लोभ मत्सर मद मस्ती द्वेष ये सब ना टिके, परमात्मा शांत हो जाए। शांत होना मतलब भगवान के विचार से एक रूप हो गया तो वो शांत हो गया। लेकिन हमारे वेदों में और शास्त्रों में जो वर्णन दिया है ना, वो शांति का भी वर्णन दे दिया है, आनंद का वर्णन दिया है। आप सब लोगों को लिखना चाहिए कि उसको आनंद प्राप्त हो। सब लोग आनंद की खोज में हैं, सब जीव यहाँ पर आनंद चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं, इसलिए आप कुछ मेहनत कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, कुछ विवाह कर रहे हो, कुछ संतान उत्पन्न कर रहे हो, घर बना रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, क्यों? अच्छा खाना बना रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग? अच्छे कपड़े पहन रहे हो, बालों को संवार रहे हो, शैम्पू लगा रहे हो, ये सब क्यों? क्योंकि आप सब लोगों को, हम सब लोगों को आनंद की खोज है, आपको आनंद चाहिए और हम ढूंढ रहे हैं कि ये करने से मिलेगा, वो करने से मिलेगा। लेकिन जानना जरूरी है कि वो आनंद इनमें से किसी भी चीज में नहीं है, वो आनंद केवल भगवान से जुड़ी हुई चीजों में है, ये हमको समझ में आना चाहिए। बाकी हमारा सारा जो प्रयत्न है ना वो व्यर्थ है, क्योंकि आप प्रयत्न करते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका समय अच्छा बीतेगा प्रयत्न करने में, लेकिन जो आपको चाहिए वो फल मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। शांति प्राप्त करके क्या करना है? शांति प्राप्त करके आनंद नहीं मिलेगा तो वो शांति भी बेकार है, क्योंकि आपका जो आत्मा का स्वरूप है वो सच्चित शांति नहीं है, वो क्या है बोलो? सच्चित आनंद है। कभी सुना आपने सच्चित सच्चित शांति? ऐसा नहीं बोला कभी? सच्चित आनंद, सत्य यानी भगवान शाश्वत है, चित्त यानी उनको पास सारा ज्ञान है, चित्त चित्त शक्ति, सत शक्ति यानी शाश्वती, चित्त शक्ति यानी ज्ञान, और आनंद यानी, आनंद यानी हृदय का आनंद, परमानंद। तो वो आनंद की खोज में हम लोग सब लोग यहाँ पर भटक रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि आनंद को खोजने के लिए जिस जगह पर खोज रहे हैं उसे है ही नहीं वो। एक जोक बताते हैं ना, एक बार किसी का अंधेरे में एक पिन गिर गया, ऐसे बड़े हॉल में एक पिन गिर गया, तो किसी ने लाइट लगाया तो वो वाला लाइट लगाया उधर का लाइट, और वो पिन ढूंढ रहा है उधर, तो उसको पिन ही नहीं मिल रहा है, तो किसी ने पूछा कहाँ गिरा था, तो वो बोल रही है इधर गिरा था, तो लोग इधर क्यों ढूंढ रहे हैं फिर, उधर लाइट है ना इसलिए वहां ढूंढ रहे हैं। समझ आपको आया? केवल वहां लाइट है इसलिए वो पिन वहां ढूंढ रहे हैं, लेकिन पिन इधर गिरी थी तो उधर लाइट है इसलिए ढूंढेंगे तो वहां पिन मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। पिन कहाँ मिलेगी? जहां गिरी थी वहां मिलेगी, वहां लाइट लगाओ, वहां देखो या टॉर्च से लगाओ। उसी तरह से हम सब लोग उन पागलों की तरह खुशी वहां ढूंढ रहे हैं, आनंद वहां ढूंढ रहे हैं जहां पर वो नहीं है। तो जहां पर वो नहीं है वहां पर आप कितना भी ढूंढोगे तो मिलेगा क्या? वहां पर नहीं मिलेगा। सिंपल, करेले के झाड़ पे आम मिलेगा क्या? कभी मिलेगा? भिंडी का बीज लगाया आपने, भिंडी का पेड़ में आम लगे, आम मिलेगा? अरे नहीं, पीछे देखो ना, पीछे होगा शायद, साइड में देखो, लेफ्ट में या और कहीं छुपा हुआ देखो, दो दो शाखाओं के बीच में कहीं रखा होगा। तो अरे आप किसी भी दिशा में देखो, भिंडी के पेड़ में कल भिंडी मिलेगा आपको, आम नहीं मिलेगा। उस तरह से इस दुनिया में आनंद नहीं मिलेगा आपको, वो वहाँ मिलेगा जहाँ पर है, और वहीं पर हमको खोजना चाहिए उसको जहाँ पर मिलेगा। उसके लिए क्या जरूरत है? ज्ञान की जरूरत है, नॉलेज। तो आज के दिन उत्तरायण के दिन भीष्म देव ने अपना शरीर छोड़ दिया। अभी समय आप लोगों को इतना नहीं मिलता है विस्तार में कहने के लिए, लेकिन संक्षेप में आपको कहा जाए तो भीष्म देव को इच्छा मरण का वरदान मिला था। आपको मालूम है स्टोरी क्या है? वो कितने लोगों को मालूम है? इच्छा मरण यानी सब लोगों की इच्छा है कि भाई हम इच्छा से मरें, लेकिन उनको वरदान मिला था उनके पिताजी से, उन्होंने उनको सेवा किया था इसलिए। तो महाभारत के युद्ध में गीता जयंती किस साल किस दिन में थी? इस साल गीता जयंती किस तारीख को थी? 19 तारीख को थी ना, इस समय दिसंबर को, हाँ 19 दिसंबर को थी। तो 19 तारीख को भगवत गीता भगवान ने बताई, वो महाभारत के युद्ध का पहला दिन था। उसके आगे 9 दिन गिनो आप, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 दिसंबर के दिन भीष्म देव को गिराया, वध कर देने कह सकते हैं, क्योंकि वध नहीं हुआ उनको, वो गुजरे नहीं उस दिन, उनको गिरा दिया, बाणों के शैया पर उनको गिरा दिया, ऐसे गिरा दिया पूरे जैसे कि बेड पर सो रहे हैं लेकिन पूरे बाण घुसे हुए हैं। लेकिन उन्होंने प्राण नहीं त्यागे क्योंकि उनको वो शक्ति वरदान से मिली थी कि मैं मरूंगा नहीं जब तक मैं नहीं चाहूंगा। तो कितना दर्द सहन किया होगा उन्होंने, हर एक हर एक 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 दो बाणों के बीच में उंगली भी जा सकती नहीं, इतने बाण थे उनके अंदर। कहते हैं 3.5 करोड़ बाण उनके शरीर में घुसे हुए थे, मतलब एक एक रोम के अंदर बाण थे उनके, इतना बाण चलाया गया था। तो कितना खून भरा होगा, मतलब खाली हो गया ना पूरा, इतना दर्द हो गया रहेगा उनको। आपको एक कांटा लगेगा और कांटा मैं निकालूंगा तो कितना तकलीफ होगा आपको। 3.5 करोड़ बाण लगे हुए, वे घुसे हुए आर पार पूरे, सर को भी नीचे बाणों का ही पिलो बना के दिया है, उधर भी ऐसे सर बाणों पर टिका हुआ है, ऐसा नहीं कि नरम नरम तकिया पर टिका हुआ है, वो भी बाणों पर ही टिका हुआ है। लेकिन गुजरे क्यों नहीं वो, क्योंकि ना पूरे जिंदगी में उन्होंने एक ही इच्छा रखी थी मन में कि मैं तो राजा नहीं बन सकता क्योंकि ब्रह्मचारी का व्रत लिया है पिताजी के लिए, और जो बन रहे हैं वो एक कोई अंधा था पहले, उसके बाद में कोई बीमार आदमी था, ऐसे ही बने ना, उसमें दुखी हो गया बेचारे वो, अरे मैंने तो वचन लिया ब्रह्मचारी का और देख रहा हूँ कि एक बना पहले वो तो अंधा हो गया, अंधा था, उसके पहले बना था वो पांडु, मतलब एनीमिक, पांडु का मतलब एनीमिया, शरीर से कमजोर, वो गुजर गया किसी बहाने, दूसरा बैठा तो वो अंधा। तो वो उनको ना चिंता थी कि कुरूर वंश के राज सिंहासन पर कोई सक्षम अच्छा धार्मिक सद्गुणी सद्विचारी व्यक्ति होना चाहिए जिसका शील और चरित्र बहुत श्रेष्ठ है, कोई मिल ही नहीं रहा था क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था, उसके 100 बच्चे थे, सब दुष्ट थे, और पांडु अच्छा था लेकिन मर गया, उसके 5 जो बच्चे थे वो सब सद्गुणी थे, लेकिन ये सब लोग मिलकर उन पर अन्याय कर रहे थे, पिताजी भी और 100 पुत्र मिलकर एक साथ उन पर अन्याय करते थे। तो बड़ी चिंता थी उनको, तो उनकी ऐसे मन में थी इच्छा थी कि मैं तब मरूंगा जब ही कुरु सिंहासन पर कोई योग्य राजा बैठा हुआ दिखेगा मुझे, और उनके जीवन में उनको दिख रहा था कि धर्मराज युधिष्ठिर यही एक राजा है इनमें से। लेकिन राजनीति और पॉलिटिक्स इतना पावरफुल है इसके अंदर कि बहुत डिफिकल्ट है ये सब, वो लोग छोड़ नहीं रहे उसको, क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, उसको आग लगा रहे हैं, विष खिला रहे हैं उनको, क्या क्या कर रहे हैं, वनवास भेज रहे हैं, अज्ञातवास भेज रहे हैं, अब क्या कपड़ा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या भयंकर काम किया उन्होंने, सोच सकते हैं आप। आज के तारीख में भी ऐसा होता नहीं, होता है कभी कभी, लेकिन भरी सभा में सब जनता के सामने ऐसा कभी हुआ है क्या, इतना मुश्किल काम उन्होंने वो भी किया। तो फिर उनको इच्छा नहीं थी कि भाई इनको युद्ध करे और प्राप्ति हो, लेकिन क्या करे, वो मानते नहीं है, बोलते 5 लोगों को ना 5 गांव क्या, सुई की नोक पर जितनी जगह होगी ना उतना भी नहीं देंगे, इतना तक आ गया पॉलिटिक्स। तो फिर युद्ध की बन गई कि युद्ध होना है, और उसमें क्या हुआ, इनके नौकरी किया तो फिर वो उसके जब पक्ष में गए भीष्मदेव, जिंदगी भर उनका नौकरी किया ना, उनका नमक खाया, द्रोणाचार्य भी उनके पक्ष में गए क्योंकि उनको ही गुरु बनकर उनका ही पगार लिया उन्होंने, उनका ही रोटी खाया था उन्होंने, वो भी तो चले गए। पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सैन्य थे, इनके पक्ष में 11 अक्षौहिणी सैन्य थे, और बड़े बड़े महारथी जो वर्ल्ड चैंपियन थे वो सभी साइड में थे। तो भी टेंशन है ना, अभी आप लोग पूछेंगे अरे इतना उनको ज्ञान था भीष्मदेव को, तो पांडवों के पक्ष में क्यों नहीं आए वो, सिंपल है ना, अभी इतना आपको नॉलेज है, मालूम है ये दुष्ट व्यक्ति है, उसका पिताजी भी दुष्ट है, इतना षड्यंत्र कर चुका है, तो मैं क्यों उसका पक्ष लूँ। लेकिन कहते हैं कि राजधर्म के बंधन से वो बंधे हुए थे, जिनका नमक खाया था उनकी सेवा करना जरूरी था, ये हमको आपको समझने के लिए अच्छा कारण है। लेकिन सही कारण क्या था उसका, क्योंकि भगवान महाभारत के युद्ध के माध्यम से हम सब लोगों को यह बताना चाहते थे कि सबसे बड़ा व्यक्ति भी जो होगा, सर्वश्रेष्ठ भी जो होगा, सबसे बड़ा वीर भी होगा, ज्ञानी होगा, सदाचारी होगा, लेकिन अगर वो असत्य के पक्ष को अपने को अपनाएगा, असत्य के पक्ष को अपनाएगा तो उसका नाश निश्चित है। अभी असत्य के पक्ष में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भी भाग लेगा तो मरेगा वो, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है कौन, वो भीष्मदेव थे, अपनी उम्र के 180 साल के एज में भी वो जग में ऐसे व्यक्ति थे कि उनके सामने कोई खड़ा होकर युद्ध नहीं कर सकता था, एक ही काफी थे वो। हमारे कराटे में कैसे होता है भाई, एक 10 आदमी से लड़ सकता है वो, लेकिन 100 आ गए तो कैसे लड़ेगा वो, दो हाथ और दो पांव है, कितने मुक्के मारेगा, चारों एक साथ चार मारेगा ना, लेकिन 100 आदमी को तो वो खा जाएंगे उसको, दूर से कोई बिल्डिंग में बैठा है वो ठॉक करेगा तो खत्म, फिर कराटे क्या करेगा आपको, ऐसे योद्धा नहीं थे वो। ये तो महारथी की व्याख्या ऐसे कि महारथी मतलब एक साथ 1000 रथियों के साथ में वो अकेला लड़के उनको हरा सकता है, उसको महारथी कहते थे। और ये तो महारथियों के महारथी थे, उनको ना द्रोणाचार्य और शकुनी और दुर्योधन की जरूरत नहीं थी, एक ही काफी था। और ज्ञान से सबसे बड़े, भक्ति में सबसे बड़े, सदाचार में सबसे बड़े, व्रत में सबसे बड़े, कृति में कर्मों में सबसे बड़े, आज तक कोई करत करे किए नहीं, इतने महान व्यक्ति थे। तो भगवान ने उनको चाहा मन में कि इनको उस पक्ष में करेंगे और उनका वध हो जाएगा तो दुनिया के सामने सत्य साबित हो जाएगा। इसलिए भीष्मदेव भगवान के इतने परम भक्त होने पर भी उन्होंने उनका पक्ष लिया। ये समझना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। जैसे कि समझो अभी ड्रामा में कोई ऐसा बहुत गंदे व्यक्ति का रोल है, कोई करना चाहेगा उसको? आपको तो हीरो बनना है या हीरोइन बनना है, तो क्वीन बनना है, तो किंग बनना है, या तो ऐसा कोई बहुत जिसका मेकअप बढ़िया होगा, बहुत उसको सजाया धजाया जाएगा वैसा रोल आप करेंगे, लेकिन कोई काला ऐसे जटा वाला बहुत भयंकर आंख वाला, तो बोले मैं नहीं करूँगा ये रोल, है मेरे को नहीं करना है, वो नेगेटिव रोल नहीं करना है। पिक्चर में वैसे होगा ना, लोग उसको हीरो बनना चाहते हैं, वो विलन नहीं बनना चाहता, और विलन का असिस्टेंट बिल्कुल नहीं बनना चाहता, कोई स्कोप ही नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो ये खराब रोल है ना, जिसको युद्ध में मरना है, आगे जाके बाण की शैया में गिर जाना है, तो वो भी रोल उन्होंने लिया। वैसे हमारे यमराज भी है, परम भक्त है भगवान के वो, लेकिन सेवा क्या करते हैं, सब दुष्टों को पकड़ पकड़ के दंड देने का काम करते हैं। मतलब क्या, सबके लिए अप्रिय बनेंगे ना वो। पुलिस पर कोई प्रेम करता है क्या? अरे कितना हैंडसम पुलिस है, काश मेरी शादी हो जाए उससे, ऐसा कोई बोलता है? शादी उसकी होती है लेकिन कोई चाहता नहीं कि भाई इतना भयंकर काम है, दिन रात गुंडों के साथ उनका पाला पड़ता है, दिन रात गलत आदमियों से संग मिलता है उनको, कोई अच्छे आदमी का कोई उनके पास कोई अच्छा आदमी आता है क्या? जो गलत होगा वही पहुंचेगा उनके पास, या तो वो पहुंच जाएंगे उनके पास और अपने घर में आके मतलब जेल में रखेंगे उसको, वहाँ सूखी रोटी खिलाएंगे और कोड़े मारेंगे उसको, लेकिन अच्छे व्यक्ति का संबंध आएगा क्या उसका? कभी कभार कोई अच्छा पढ़ा लिखा चश्मा पहना हुआ होशियार दिखने वाला अच्छा आदमी पहुंच गया ना, तो वो देखेगा कुछ गुनाह किया होगा इसने, इसलिए आ गया, ऐसा सोचेगा कि नहीं? उनका सीढ़ी चढ़ने वाला व्यक्ति कौन होता है? वो ऐसा ही होता है। लेकिन यमराज ऐसा नेगेटिव काम कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण के लिए कर रहे हैं वो, क्योंकि कोई ना कोई तो करना चाहिए ना। सब लोग अच्छा अच्छा काम लेके बैठेंगे, कोई प्रकाश दे रहा है, कोई जल दे रहा है, कोई वायु दे रहा है, कोई वर्षा दे रहा है, कोई समुद्र की रक्षा कर रहा है, तब बढ़िया अच्छा अच्छा काम करेंगे तो लोग वरदान मांगने आएंगे, आपके नाम पर व्रत करेंगे। कैसा कोई व्रत है क्या पूरे वेद में? देखो यमराज के लिए क्या होगा व्रत है? यम व्रत सब औरतें कर रही है, यमराज का व्रत कार्तिक महीने में सब लोग यमराज का व्रत कर रहे हैं, ऐसा कोई है क्या? उनके नाम में कोई व्रत भी नहीं करता है, सब उनके नाम से बोलता है, अरे नहीं नहीं बाबा हमसे इनसे पाला नहीं पड़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए इनका मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा कोई काम देगा जो करेंगे आप? लेकिन वो कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। वैसे ही भीष्मदेव है, कोई अगर भगवान को दुनिया में कुछ सिखाना है तो जो विश्वसनीय व्यक्ति है ना उसको ही लगाएगा, जिसको जिसको पर पूरा विश्वास है कि ना मैं इसको वापर सकता हूँ किसी को सिखाने के लिए। हमारे माटे में कैसे कहावत है, लेकी बुने बोले सुने लागे, है ना? तो लेक मतलब मुलगी जो है ना, उसको उस पर माता को विश्वास रहता है कि मैं उसको जो चार शब्द बोलूँगी ना तो समझ जाएगी मेरे लिए नहीं बोल रही है, वो बहू के लिए बोल रही है, और वो ठीक है बोले, मतलब वो बहू को बहू के लिए बोलेगी, लेकिन बोलेगी लड़की को और डांटेगी अपने, है ना? समझो कोई अच्छा आदमी मेरे साथ बैठा हुआ है, दो चार लोग बैठे हुए हैं, तो भाई अच्छे आदमी को कैसे बोलने का, टाइम हो गया आपका तो मैं आपको बोलूँगा, ये कितना टाइम से बैठे यहाँ पर, चाहो ना 3 बज गया ना अभी, तो वो आपको बोलेगा तो आपको बोलने का अधिकार है मुझे, तो वो समझ जाएगा कि टाइम हो गया अभी निकलना चाहिए यहाँ से, उसको बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे ना। वैसे ही भगवान विश्वसनीय कौन है उसको वो नेगेटिव रोल देंगे और जिसके द्वारा दुनिया को समझाएंगे। और भी लोग पूछते हैं कि भीष्मदेव अरे इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े पराक्रमी, इतने अधिकारी, इतने सीनियर, इतने पावरफुल व्यक्ति थे वो, तो द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था तो कुछ नहीं किया उन्होंने? तो उस समय उनको तलवार निकाल के सर काटने का अधिकार नहीं था क्या? कौन रोकता उनको, किसकी हिम्मत थी रोकने की? लेकिन भगवान ने उनको पूरा भ्रमित करके रखा था उस समय, कि महाभारत का युद्ध कैसे होगा फिर आगे, भगवान को जो सबक सिखाना है वो कैसे होगा। इसलिए देखो आप भीष्मदेव ऐसे ऐसे करके तड़प रहे हैं पूरा, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं, अभी उठू नहीं उठू नहीं करूं। कहते उनके पैरों के नीचे की जमीन ऐसे दब गई थी, इसको जोर से ऐसा मतलब असहाय होकर बैठे थे उस समय उधर। उसका भी उनको फल मिला। अच्छा व्यक्ति अगर अन्याय होते हुए देखते रहता है तो देखते रहने का पाप भी लगता है उसको, या तो आप निकल जाओ वहां से अगर आपको अन्याय का सामना करने की शक्ति नहीं है। वो लोग बहुत जोरदार है और आप कमजोर हो, लेकिन अन्याय को देखते मत रहो। अन्याय को देखते रहेंगे तो उसका भी पाप आपको लगेगा। इस तरह से भीष्मदेव का जीवन है ना बहुत बड़े त्याग से भरा हुआ है, बहुत बड़े संघर्ष से भरा हुआ है, कश्मकश से भरा हुआ है। इतना अंदर का कश्मकश किसका भी किरदार में नहीं हुआ है आज तक। सबको कष्ट हुआ है महाभारत में, लेकिन भीष्मदेव का कष्ट को विशेष था कुछ। और इतने सालों से उन्होंने कितनी पीढ़ियां देखी, बाप रे, चार पीढ़ियों का दर्शन किया उन्होंने। तो ऐसे ही भीष्मदेव जब शरपंजर में गिरे तो मरे नहीं वो, क्योंकि उनको मालूम था कि और युद्ध बाकी है। और ये युद्ध में भले वो पांडवों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, लेकिन बार बार आशीर्वाद दे रहे थे, विजयी भव विजयी भव विजयी भव। तो दुर्योधन बोलता है क्या पितामह आप सब नाटक कर रहे हो, आप हमारे पक्ष में युद्ध कर रहे हो और उनको विजयी भव का आशीर्वाद दे रहे हो, ये कैसा तुम्हारा न्याय है? मतलब तुम युद्ध नहीं करने वाले बराबर से, मुझे मालूम है। ऐसा बोलता ना लुटू पुटू की लड़ाई, ऐसा ही आप टाइम पास में युद्ध कर रहे हो, रियल युद्ध नहीं कर रहे हो विजयी होने के लिए। उनको बचा बचा के बाण मंत्र चला रहे हो, उनके ऊपर नहीं चला रहे हो, निर्णायक बाण होते ना वो मारेगा तो ये खत्म हो जाएगा, वो ऐसा बाण नहीं मार रहे आप। तो आठ दिन में ना ऐसा युद्ध किया उन्होंने, लेकिन पांडवों को नहीं मारा। तो दुर्योधन परेशान हो गया, क्या चल क्या रहा है, आधी सेना समाप्त हो गई पांडवों की लेकिन पांडव नहीं मरे अभी तक। तो आया तिलमिला के, बोला क्या पितामह आप युद्ध कर रहे हो, कैसे वीर हो आप, वीर तो हो लेकिन वीरता का उपयोग नहीं कर रहे हो, सारा प्रेम की वजह से कमजोर हो गए हो आप। ऐसा ना बहुत बुरा भला बोल के उनको उकसा दिया उन्होंने पूरा। वीर को बोलेगा तुम वीर नहीं हो तो वीर का तो खोल उठेगा ना खून। तो उन्होंने उधर ही उंगली रखा, क्या वीर हो लेकिन वीरता का प्रयोग नहीं कर रहे हो, तुम्हारी वीरता को प्रेम का रोग लग गया है, तुम्हारी वीरता के वजह से प्रेम बीच में आने की वजह से तुम अपने शत्रु को नहीं मार पा रहे हो और नाम के लिए सेनापति बनकर बैठे हो मेरा। तो बोले दुर्योधन ये लो पांच बाण, मैं वादा करता हूं कल के दिन ये पांच बाण मैं पांच पांडवों को मारने के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो इतना कपटी था ना वो, बोलते मेरे पास दो बाण वो मैं रखता हूँ, कल दूंगा सुबह आपको। तो बोलेंगे भूल के आए, वो बाण उधर ही रखा। दुर्योधन ने पांच बाण ले लिए अपने पास। तो ये खबर पहुंच गई तो पांडवों के तंबू में घबराहट फूली। बोले भीष्मदेव ने अगर वैसा वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है तो खत्म हो गया हमारा, अभी नवे दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने बोला द्रौपदी चलो मेरे साथ। द्रौपदी चली तो रात का मतलब ऐसे सुबह का समय था लेकिन अंधेरा था, भोर का समय। तो भीष्मदेव तभी भी देखो आप युद्ध चल रहा है धनाधन दिन रात दिन भर, और सुबह के समय उठकर जप कर रहे हैं गंगा स्नान करके, सब जप जाप करके फिर युद्ध में जा रहे हैं। संध्या हो गई फिर बैठ के ज्ञान शास्त्र का अध्ययन करेंगे, भोजन करेंगे, सो जाएंगे, सुबह उठ के नदी में स्नान करेंगे, जप करेंगे। ऐसे वो अंधेरे में जप करते बैठे हुए स्नान वान करके। तो ले जाते हैं द्रौपदी को, बीच में बोलते हैं हे चप्पल निकालो पैर से, उसको बगल में दबा के चलो, क्योंकि चप्पल की आवाज़ से भी पहचानते वो कौन आ रहा है, इतने बड़े विद्वान थे वो, चप्पल के चलने के आवाज से वो पहचान सकते थे कि कौन आ रहा है, तो तुमको पहचान जाएंगे, इसलिए तुम वो निकाल के चलना और बिल्कुल धीरे धीरे चलना। तो ऐसे आँख आधे आँख बंद करके ध्यान कर रहे थे, तो वो स्त्री यानी द्रौपदी ने प्रणाम किया, प्रणाम पितामह, तो उन्हें कहा अखंड सौभाग्यति भवा, मतलब पांच पांडवों का वध करके वो क्या बनने वाली थी, विधवा, उसको सौभाग्यवती का वध दिलवा दिया, तो वहां पर वो सेफ हो गई। फिर अर्जुन को भेजा, तो अर्जुन क्या चाहते हो, वत्स मांगो क्या चाहते हो, क्योंकि बहुत प्रेम था उनका अर्जुन के ऊपर और पांडवों के ऊपर। तो अर्जुन को आगे किया, अर्जुन को बड़ा पटाके भेजा था उन्होंने, पटाके अच्छी तरह से, उनको बोला वो पांच बाण मांग लेना उनसे। तो बोले वत्स मांगो। उनका पितामह वो पांच बाण दे दो, तो दे दिया उनको पांच बाण। ऐसे कृष्ण ने उनको ना अनंत जगह पर बचाया, अनंत जगह पर। तो फिर अगले दिन के वो इतने क्रोधित हो गए कि ऐसे कृष्ण भगवान ने ट्रिक किया, पांच बाण भी ले लिए, द्रौपदी को सौभाग्यवती का वध दिलवाया। तो बोला अभी मैं ऐसा खूंखार युद्ध करूंगा, तो ऐसा खूंखार युद्ध किया, ऐसा खूंखार युद्ध किया, सब परेशान। तो अगले दिन वापस गए। अभी पांडवों के तंबू में इतनी घबराहट थी, बोले ये इनको रोकेंगे कैसे, ये तो झंझावात है, पूरा तूफान है, ये इसको रोकना किसी के बस में काम नहीं, सबके साथ भी मिलकर इस तूफान को रोकना मुमकिन नहीं है। तो भगवान ने कहा कि इसको सरल तरीके से नहीं मार सकते, उसका भी कुछ कूटनीति का उपयोग करना पड़ेगा। तो मीटिंग किया उन्होंने, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। भगवान बड़े होशियार है, देख रहे हैं, कोई तो बोलेगा, कोई तो बोलेगा, कोई नहीं बोल सकता है, सोच सकता नहीं, क्या कर रहे हैं इनके लिए। तो भगवान ने कहा कि एक ही रास्ता है, उनको ही जाकर पूछा जाए कि आपका कैसा वध करें। तो ये सुनकर सब पांडव फूट फूट कर रोने लगेंगे कि कैसे उनको हम पूछ सकते हैं, वो तो उनके गोद में खिले हम लोग, उनके हाथ से मिठाई खाई, उनकी दाढ़ी खींची हमने, इतना प्रेम किया, उनके कंधे पे चढ़े हैं, उनको कैसे पूछे हम। युद्ध की शुरुआत में भी उन्होंने बाण मारा था उनके चरणों में वंदन के रूप में, योद्धा की तरह बाण मारकर चरणों में वंदन किया था उनको, सैल्यूट एक योद्धा की तरह, उसको हम कैसे पूछे। तो फिर वो बोले कि फिर बैठो, अपने सेना का अंत होने तक इंतजार करो, बाद में मुझे मत पूछना। तो ये करके डिस्कस करके भगवान उनकी तैयारी करते हैं मन की, भाई पूछना ही पड़ेगा। फाइनली उनको तैयार करके काउंसलिंग करके, वो कितना इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग, है ना, पहले नाराज है वो, तैयार नहीं है, उनको भगवान ने समझा बुझा के फिर अर्जुन को तैयार करवाया। और वो इतना फूट फूट कर फूट फूट कर फूट फूट कर रो के गए पांडव, सब पांडव भीष्मदेव के पास। फिर वैसे ही भजन में बैठे हो ध्यान करते हुए, बोला अरे आज सब पांचों भाई सुबह सुबह आ गए, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। अरे क्यों रो रहे हो, क्या सोच कर आए हो, बोलो ना क्या चाहिए आपको। कोई बोल नहीं पा रहा है, बहुत देर तक रो रहे हैं, केवल रो ही रहे हैं, और वो देख रहे हैं, देख रहे हैं, रो ही रहे। बाद में पूर्व कुछ संभलने के बाद में अर्जुन पूछते हैं कि हम ये आपको पूछने आए हैं कि आपका वध कैसे किया जाए, कितना मुश्किल लगी होगी उनको बोलने के लिए, ये भगवान का आदेश था तो बोल लिया। अब समझो आपको किसी ने पूछा हाँ कि आपका वध करने का क्या तरीका है बताओ, तो कितना दुख होगा आपको, और आप बताओगे उसको हाँ ऐसा करोगे, तो वो खुशी से पागल हो गए, बोले इसी दिन का मैं इंतजार कर रहा था कि कोई तो मुझे योद्धा पूछे कि तुम्हें मारने का अधिकार कैसे मार सकूंगा, क्योंकि सामान्य तरीके से मुझे कोई भी मार नहीं सकता, कोई भी मार नहीं, मुझे इच्छा मरण का वरदान है, मैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूं, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं सकता और मारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन एक ही तरीका है, क्योंकि मैं भी जिंदगी से बहुत तंग आ गया हूं, इन लोगों का संग कर करके इनका राज्य चला चला के मैं इतना परेशान हो गया हूं कि मुझे भी मरना है, लेकिन अच्छे राजा को बिठा के मरना है। तो ठीक है, आज आपने पूछा है तो खुशी से बता रहा हूं मैं आपको कि मेरे सामने अगर कोई नपुंसक खड़ा होकर अगर मुझे आह्वान देगा सावधान शस्त्र उठा के उठाने के लिए, तो मैं शस्त्र डाल दूंगा नीचे और फिर मुझे आप बाण चला सकते हो। तो इसका भी एक इतिहास है, इतना समय अपने पास नहीं है। उसका इतिहास ऐसा है कि एक अंबा देवी थी, काशीराज की पुत्री, दो बहनें और थी उसको, अंबिका अंबालिका। बड़ी बहन जो थी उसका शालवर से साथ प्रेम था, और ये भीष्मदेव गए थे स्वयंवर में गए थे किसी के, अपने भतीजों के विवाह के लिए खुद गए स्वयंवर में और तीनों कन्या को उठा के ले गए बल से। स्वयंवर तो रखा था उनको माला रखने के लिए जाने के लिए, क्योंकि किसी को मौका ही नहीं दिया, सबको बाण चलाया, सबके मुकुट उड़ा दिए, तीनों को ऐसे पकड़े रथ में बिठाया और लेके आए अपने भतीजों को शादी कराने के लिए। तो इतना भीष्मदेव का तेज था, इतना शक्ति था, इतना बड़ा पोजीशन था, इतना पावर था, तो वो कुछ बोल नहीं पाए उनके सामने। भीष्मदेव ने आके तीन कन्याओं को अपनी माता सत्यवती को सौंप दिया, बोले माता तीन कन्याओं को लेकर आया हूँ, तुम्हारे तीन पुत्रों के साथ विवाह कर देना उनका। तो उसमें से पहले बोलती हैं, मतलब अभी अभी होने वाले सासू को, वो तो स्त्री है ना, वो माँ की तरह समझ जाएगी, इतना हिम्मत हो सकती है। तो सत्यवती माँ को बोलती है, माता मैंने तो मेरा दिल शालवा राजा को दे दिया है, तो मैं तुम्हारे पुत्रों से विवाह नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं बताया? बोला वो तो इतना तूफान की तरह आए थे, इतने बड़े वीर थे, उनके तूफान के सामने हम क्या बोलेंगे, इधर आके वो मुंह खोल पाए। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको भेजती हूँ। हे भीष्मदेव, पहले बोलती है कि पहले पहले वो कहती है कि नहीं सॉरी, पहले बोलती है कि मुझे भेज दो। तो भीष्मदेव कहते हैं ठीक है भेजते हैं आपको। तो उसको ना इत्मीनान के साथ पालकी बिठा के शाल्व के पास भेजते हैं कि उसका विवाह ही हो जाए वहाँ पर, जिसके साथ विवाह करना है, प्रेम है, हो जाएगा उसका विवाह। तो शाल्वराज क्या बोलता है, तुमको भीष्मदेव ने हाथ पकड़कर छीन कर ले गया था, वो किसी दूसरे पुरुष ने आपको छुआ है, तो मैं आपको अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अभी वही तुमको एक्सेप्ट करेगा जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ के ले गया है। तो फुटबॉल की तरह हो गई ना, फुटबॉल की तरह इधर उधर गई, फिर उधर से उधर गई, वापस आई और भीष्म को बोलती है कि तुमने मुझे हाथ पकड़ कर ले गया था, तो तुमको ही मुझे विवाह करना पड़ेगा। तो कह रहे नहीं 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 मैं नहीं कर सकता, मैं तो ब्रह्मचारी का वस्त्र लिया है, आज जन्म ब्रह्मचारी हूँ मैं। तो वो जाती मैया के पास, इनको समझाओ आप। तो बोलते मैया आप और कुछ बोलो मेरे को, विवाह नहीं कर सकता मैं। तो बड़ी गुस्सा आता है उसको, तो वो जंगल में जाती है, क्योंकि ना सासू जो व्यक्ति है स्त्री वो न्याय दे रही है, ना भीष्म न्याय दे रहे हैं, और इसमें और बड़े व्यक्ति हो कौन, दो ही तो बड़े बड़े व्यक्ति, दोनों न्याय दे रहे। जंगल में गए ऋषियों के पास, शायद ऋषियों का सुनेंगे। तो ऋषियों ने बोला, तो उन्हें बोला नहीं भाई नहीं कर सकते, उनका भी नहीं माना। तो परेशान हो गई वो, उसने बोला कि इनके गुरु को बुलाते हो मैं, तो गुरु का व्रत किया, तपस्या किया, परशुराम को बुलाया नीचे। परशुराम का तो मानना ही पड़ेगा, परशुराम ने आदेश दिया इसके बाद विवाह करो। तो भीष्मदेव कहते नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरा मेरा प्रतिज्ञा है मैं नहीं कर सकता, तो फिर मुझे युद्ध कर, मरने को तैयार हो जा। बोले ठीक है, चालू हो गया उनका युद्ध, गुरु और शिष्य का, परशुराम और भीष्मदेव का। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, सारे देवता अपना ऑफिस छोड़कर आ गए उधर देखने के लिए, पूरे आकाश में जमा हो गए। बाप रे, इतना बड़ा युद्ध तो कभी हो नहीं रहा था, इतने बड़े महान योद्धाओं में और ऐसा युद्ध हो रहा था, क्योंकि परास्त नहीं हो रहा है। आखिर ना परशुराम बोले, धन्यवाद वत्स, आज मैं धन्य हो गया, इतना बड़ा वीर पराक्रमी शिष्य प्राप्त हो गया, जो मुझे भी हारने के लिए, मैं भी शक्तिशाली नहीं हूँ कि तुमको हरा सकूँ, ऐसा तुम वीर बन गया है, जाओ तुम्हारी मन मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में। तो अम्मा देख रही है, अरे ये भी फेल हो गया, हाँ टॉप व्यक्ति को लेके आई मैं, लेकिन वो भी हार गए उनके सामने। तो बोलते ठीक है, अब मैं तपस्या करूँगी और तपस्या करके दूसरा जन्म ऐसा लूँगी इसके मृत्यु का कारण बनूंगी मैं। तपस्या किया, शरीर समाप्त हो गया और अगले जन्म में वो द्रुपद राजा के यहां शिखंडी बनकर आई। द्रुपद राजा कौन थे? द्रौपदी के पिताजी। द्रुपद राजा ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ से आई थी द्रौपदी, और दृष्टद्युम्न ने उसका भाई भी आया था, और उसके बाद में शिखंडी का जन्म हुआ था, लेकिन शिखंडी जन्म से नपुंसक था। ये पूरा एक बड़ा कनेक्शन है उसके अंदर, और नपुंसक बनके उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, भीष्मदेव का वध का मैं कारण बनूंगी। ना पुरुष है ना स्त्री है, लेकिन बड़ा योद्धा का ट्रेनिंग लिया उसने, एक आदमी की तरह महावीर बना वो। तो अर्जुन को भी भीष्मदेव बता रहे हैं, अगर कोई नपुंसक मुझे आके युद्ध में चैलेंज करें तो मैं शस्त्र छोड़ दूंगा, मैं नपुंसक पे शस्त्र नहीं चलाऊंगा, स्त्री और नपुंसक आई कैन नॉट अटैक। तो बोला ठीक है। तो पांडवों को समझा नहीं कुछ, पांडव फिर वापस लौट के आए, उसने बोला मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, ये रहस्य भेद मैं करूंगा। तो कल के युद्ध में क्या करेंगे हम, शिखंडी को सेनापति बना के आगे करेंगे और अर्जुन उसके पीछे पीछे जाएंगे, और युद्ध जब शुरू होगा ना, शंख बजेगा ना सुबह सुबह सूर्योदय समय, उस समय शिखंडी भीष्मदेव के सामने जाएगा, बोलेगा सावधान। उस समय जब शिखंडी को देखेंगे तो वो शस्त्र को नीचे रखेंगे, फिर शिखंडी बाण मारेगा, वो बाण तो छुएगा भी नहीं, ऐसा नहीं लग के गिर जाएगा, अर्जुन पीछे से बाण मारना। तो जैसे शिखंडी आया सुबह, तो भगवान अर्जुन के रथसारथी है, वो उसके पीछे हैं, शिखंडी भी आगे वाले रथ में है। भीष्म देखते हैं सब, हाँ ये तो अभी पूरा प्लानिंग बना के आए हैं। जैसे ही शिखंडी ने आह्वान दिया, भीष्मदेव ने अपना बाण नीचे डाल दिया, धनुष बाण छोड़ दिया नीचे, ऐसे खड़े हुए। फिर शिखंडी ने बाण मारना शुरू किया और पीछे से ऐसे बाण आए जो वज्र जैसे शरीर को, भीष्मदेव की वज्र शरीर को भेद के ऐसे निकल गए वो। तो भीष्मदेव बोल रहे हैं, मैं जानता हूं शिखंडी, ये तेरे बाण नहीं है, ये बाण अर्जुन के हैं, क्योंकि अर्जुन के सिवा किसी के बाण मेरे शरीर को भेद नहीं सकते हैं। तो कहते हैं वाह वत्स वाह, एक एक बाण खा रहे, आ एक बाण खा रहे, वाह एक बाण खा रहे, आ बोल रहे, एक बाण में वाह बोल रहे हैं, वाह वत्स वाह, मुझे गर्व है तुम्हारे धनुर्विद्या पर कि तुम मुझ पर ऐसे बाण चला रहे हो जो मेरे शरीर में भेद के आगे जा रहे हैं। ऐसे करते करते फिर सारे उसके धनुष बाण सब गिरा देते हैं, फिर तलवार निकालते हैं उस पर एक बाण मार के तलवार भी उड़ा देते हैं, और फिर इतने बाण मारते हैं, इतने बाण मारते तो ऐसे 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 होते हैं, फिर बाद में एक बाण मारते हैं गिरा देते हैं बाणों की शैया पर। अर्जुन इतने बड़े योद्धा थे, उन्होंने बाण मारते समय भीष्मदेव को देख ही नहीं पाए, वो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि बाण ऐसे लक्ष्य को, शत्रु को ऐसे पकड़ते हैं, शत्रु को आंखों में कंठ पे नक्श करके मारते ना, नेम करके मारते हैं, वो शत्रु तो नहीं थे, वो पितामह थे, उसको कैसे उनको देखेंगे। तो सारे बाण अर्जुन ने नीचे देखकर मारे उनको, इतना बड़ा कुशल योद्धा था वो, ऐसे बाण मारे बिना देखे यार भीष्मदेव को, रोम रोम में बाण मारे उनके, बोलो। तो अर्जुन एक देखो, एक तरफ से गिर रहे हैं भीष्मदेव, एक तरफ से आनंद से फूले नहीं समा रहे कि देखो मेरा भाग्य, देखो अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त के हाथ से मेरी मृत्यु का कारण हो रहा है आज, मेरा भाग्य है ये, इस पर मैं प्रेम करता हूं, वो मेरी इच्छा थी कि ऐसे मरना होगा तो ऐसे योद्धा के हाथ से मरना चाहिए, तो मेरा परम भाग्य है कि मुझे अर्जुन के बाण लग रहे हैं। ऐसा भी होता है प्रेम कभी भी युद्ध में, फिर वो गिर जाते हैं, जैसे गिर जाते ना सब पांडव लोग शस्त्र छोड़कर आ जाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जब भीष्मदेव को अर्जुन बाण मार रहे थे तो सारा युद्ध रुक चुका था, होता ना भीष्मदेव अर्जुन के साथ लड़ रहे हैं तो भीम उसके साथ लड़ रहे हैं, होता ना बहुत सारे युद्ध चलते रहते हैं, लेकिन जिस दिन भीष्मदेव का युद्ध हुआ शिखंडी सामने अर्जुन पीछे, उस समय उतने समय के लिए सारे बाकी युद्ध बंद हो गए थे, सब लोग खाली देख रहे थे प्रेक्षक के रूप में, अपने अपने धनुष में अपने 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 रथ में खड़े थे और ऐसे खड़े थे बस देख रहे थे क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा अनोखा युद्ध था वो जिसमें आखिर सबके सामने कौरव पांडवों के सामने भीष्मदेव को गिराया गया, और गिराते हुए आशीर्वाद दे के गिरे हो, धन्यवाद है तुम्हारा, धन्यवाद है, और जीवित रहे, क्योंकि उनको जिंदा रह के देखना था कि धर्मराज जो राजा बने, और भगवान को भी पता था कि ये मेरे शुद्ध भक्त हैं, इन्होंने मेरे लिए इतना तपस्या किया जीवन में, मेरे जो धर्म मेरे मैंने बनाया है उस धर्म को स्थापित करने के लिए पूरा जीवन त्याग दिया उसने, राज्य पद त्याग दिया, विवाहित होने का भी भाग्य त्याग दिया, सिंहासन त्याग दिया, इतना धन दौलत त्याग दिया, सेवक बन के रहे वो, केवल धर्म का राज्य स्थापन हो इसके लिए प्रयास करते रहे, जो मेरा काम है यदा यदा ही धर्मस्य, वो मेरे काम के लिए जीवन त्याग दिया उसने, मेरे उद्देश्य के लिए विपक्ष में भी सहयोग दिया, जो मेरी मर्जी थी वो सब कुछ किया, तो उसे सदगति देनी चाहिए, तो रुके रहे। फिर आप जानते हो सब लोग आगे क्या हुआ, फिर द्रोण सेनापति बने, उनका भी वध किया गया, फिर शकुनी बने उनका वध हो गया, कर्ण हो गया उसके बाद में, कर्ण का वध हो गया, फिर शकुनी बने, फिर दुर्योधन स्वयं बने, उनका भी वध किया गया, और सब लोग मर गए, पांडवों के पक्ष वाले भी मर गए और सब दुर्योधन के पक्ष वाले, और दुर्योधन के साथ सारे कौरव सब मर गए, खाली 5 पांडव बचे। फिर सब लोग गए, विश्राम किया, फिर डेट फिक्स किया, मुहूर्त फिक्स किया, फिर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, जो कुरुवंश का राजदंड था वो अभी युधिष्ठिर के नाम हो गया, सब उसके भाई मंत्री बने, यानी कि चक्रवर्ती सम्राट बने, इतना गौरव हुआ उनका, इतने तपस्या के बाद में सही व्यक्ति सही कुर्सी पर आ गया, और सारा होने के बाद में अब युधिष्ठिर राज मुकुट पहना हुआ है, राजदंड उनके सामने है, राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सब रॉयल जितना ऐश्वर्य संपन्न उनकी चीजें ना राजा की सब प्राप्त कर चुके हैं। तो बोलते हैं अभी चलो, तो कहाँ चलना है, युद्ध भूमि पे चलना है, वहाँ पर भीष्मदेव अभी भी सब मर गए लेकिन अकेले जिंदा है वहाँ पर, और ऐसे योद्धा है कि वो ऐसे अवस्था में राज दरबार में नहीं आ सकते, वो तो रणांगण में पड़े हुए हैं। तो योद्धा को आखिरी सलामी देनी है तो योद्धा की तरह देनी चाहिए। आप आज क्या करते हैं, 21 बंदूक चलाते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं, लेकिन 21 बंदूक चलाते हैं योद्धा की तरह, फिर उसको विदाई करते हैं, चलो रणांगण में। तो सब लोग ना, और अभी देखो समझो कोई मर रहा है, समझो आप कोई किसी का शोक सभा है, तो आप क्या अलंकार पहन के जाओ क्या? आप अलंकार पहने हो तो निकालोगे, वो सफ़ेद रंग के कुर्ता पैजामा वो साड़ी पहन के और तोड़ के जाओगे आप? ऐसा नियम है ना अपना। इन्होंने कहा नहीं, किसी को भी शोक सभा की तरह जाना नहीं है, पूरे वस्त्र अलंकार राजदंड सेना सब कुछ लेके जाना है। वर्दी देने वाले होते ना वो महाराज धीराज आ रहे हैं, वो सबको ले जाना है आपको। क्यों? ये तो अपमान है उनका। ऐसा नहीं, वो जानते थे कि भीष्मदेव के अंदर की इच्छा क्या थी। उनको अपने मरने के पहले धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बना हुआ देखने की बहुत इच्छा थी उनको। तो राजा बना हुआ युधिष्ठिर अगर सफ़ेद वस्त्र पहन के जाएगा तो कैसा आनंद होगा उसको, इसलिए उन्होंने आदेश दिया उनको। तो सब लोग सज धज के एकदम राजा बनकर मंत्री बनकर सब चले गए, वर्दी दिया गया, राजदंड भी लेकर गए, सैनिक भी गए आगे, फिर पीछे युधिष्ठिर महाराज, वैसे जाकर सब लोग मिले। देखो इतना गौरव है भीष्मदेव का। भगवान ने भीष्मदेव का गौरव करने के लिए उनको एक आदेश दिया, बोले ये युधिष्ठिर महाराज है ना ये बड़े दुखी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे लिए इतने करोड़ों लोगों का संहार किया गया मुझे राजा बनाने के लिए, क्या फर्क था अगर राजा नहीं बनता तो, इतने लोगों को मौत के बाद मुझे राजा बना, बहुत दुख है इसको, पश्चाताप करने के रो रहा है बहुत, इतना खुश नहीं है राजा बनने के बाद भी, उसको उपदेश करो आप, राजधर्म का उपदेश करो, भगवत धर्म का उपदेश करो, स्त्री धर्म पुरुष धर्म जितने भी धर्म है दुनिया में वो सबका उपदेश करो। अभी आप सोचो, समझो आपके शरीर में एक कांटा घुसा हुआ है, हाँ आप एडमिट हो हॉस्पिटल में, और मैं बोल रहा हूँ इसको भगवत गीता सुनाओ तो आप बोलेंगे सर हाथ दुख रहा है मेरा, अभी मैं क्या बोलूँ, अभी थोड़ा ठीक तो होने दो आप। अभी इनके हाथ में एक कांटा नहीं घुसा हुआ है, इनके में 3.5 करोड़ बाण घुसे हुए हैं और खून सब बह चुका है, कभी भी मर सकते हैं। उनको आदेश दे रहे हैं कि इस दुखी व्यक्ति को पहले तो काउंसलिंग करो, उसके बाद में राजा बनाया नया नया तो आगे राज्य कैसे चलाना है उसके बारे में पूरा ज्ञान दो उसको आप, इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया उनको। तो एक जगह ऐसा लिखा है कि उतने दर्द भरे कंडीशन में भी भीष्मदेव ने पूरा आदेश उनको सुनाया है। महाभारत में एक पर्व है, पर्व भीष्म पर्व, उसके अंदर एक और चैप्टर है अनुशासन पर्व, उसमें भीष्मदेव ने सारे धर्मों का वर्णन दिया है। संत लोग कहते हैं कि हमको वो पढ़ना चाहिए, स्त्री का धर्म क्या है, पुरुष का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, हर व्यक्ति का धर्म का उधर वर्णन किया गया है, पत्नी का धर्म क्या है, बेटों का धर्म क्या है, एवरीथिंग। तो कहते एक जगह ऐसा लिखा है कि भगवान ने शरीर को हाथ लगाया, और जैसे हाथ लगाया ना सारे 3.5 करोड़ बाणों का दर्द जो है वो खत्म हो गया, और फिर भीष्मदेव ने युधिष्ठिर को उपदेश किया है। और उपदेश करने के बाद में फिर जब ये तब तक चल रहा है, कभी चल रहा है, आज तक चल रहा है, मकर संक्रांति तक ये चल रहा है डिस्कशन। जैसे ही सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया उस समय उनका प्रवचन सब समाप्त हो गया। फिर उस समय सब लोग सराहने बैठे हुए हैं, कुछ सराहने बैठे हुए हैं, कुछ बाजू में बैठे हैं, कुछ हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भगवान ऐसे उठकर ऐसे आए और ऐसे पैर है ना उनके पड़े हुए, ऐसा मुंह है मेरे जैसा, तो सामने आके खड़े हो गए भगवान ने। भगवान ने उनको ऐसे हाथ जोड़ के दर्शन दिया और फिर भगवान की स्तुति करते हुए, मुंह से भगवान का गौरव करते हुए, उनका नाम लेते हुए, आंखों में भगवान के लिए प्रेम के अश्रु बहाते हुए, अनंत बाण लगे हुए दोनों हाथ इकट्ठा करके, ऐसे ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे इधर भी बाण इधर बाण है ना, ऐसे तो यहाँ तक ही ला सकते हैं, ऐसे वंदन करते हुए, प्रेम के आंसू बहाते हुए, मुख से भगवान का गौरव करते हुए, निरंतर उनका दर्शन करते हुए उन्होंने प्राण छोड़ दिए। देखो वो आज का दिन है, क्योंकि वो वेट कर रहे थे, भगवान ने भी उनको वेट करवाया कि उनको अगर मरवाना है, अगर मरना है उनको, उनकी इच्छा भी पूरी हो गई ना, वो तो इच्छा से मरने को तैयार हो गए, तो भगवान ने उनको उत्तरायण तक रुकवाया, क्योंकि उत्तरायण में जो शरीर त्याग देता है भक्त भगवान का, वो भगवत धाम चला जाता है। तो एक भक्त के लिए भी उन्होंने श्रेष्ठ कैसे किया, यद यद यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत्य कलेवरम, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में जो भगवान का स्मरण करते ही गुजरेगा वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। भगवान तो सामने खड़े हो गए ना, आके देख रहे हैं, उनको मालूम है मेरा भक्त वेट कर रहा है मेरे लिए। तो योग्य सब भगवान उनके सामने आए, भगवान सामने खड़े होंगे तो याद किसके आएगा आपको? रावण की याद आ गई। स्वयं भगवान साक्षात खड़े हैं सामने, उनके लिए प्रेम के अश्रु बह रहे हैं, तो किसकी याद में मन में याद रहेगी? तो भगवान ने न केवल याद दिलाया, दर्शन दिलाया, प्रेम के अश्रु बहवाए, सब कुछ किया उनके लिए भगवान ने। और परफेक्ट टाइम पे, परफेक्ट कंडीशन में, कंडीशन परफेक्ट कैसी? अरे ऐसे महान महाभागवत भक्त बैठे हुए हैं, युधिष्ठिर, धर्मराज, धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, विदुर, ऐसे महान महान संतों की मंडली के बीच में जो उनको प्रेम दे रहे हैं, उनका संग है, स्थिति इतनी श्रेष्ठ है। भगवान का सामने दर्शन है, भगवान का नाम मुख में है, भगवान की याद मन में है, भगवान के लिए हाथ जुड़े हुए हैं, भगवान के लिए समर्पित है, आखिरी मरते मरते भी उनकी आज्ञा पालन किया उन्होंने। बोलो, ऐसा नहीं कहा भगवान इतना तप किया तुम्हारे लिए, अभी मरते हुए कितना डिफिकल्ट सेवा क्यों दे रहे हो मुझे, आप आराम से मरने दो मुझे। नहीं, आखिर तक सेवक बने रहे वो, कोई ऐसा वजह नहीं बताया, बहाना नहीं बताया, भगवान दर्द हो रहा है, आपकी आज्ञा है तो पूरा करना है, तुरंत चालू हो गए। लास्ट दम तक भगवान का सेवा किया, भगवान ने एक श्रेष्ठ तरीके से, सर्वश्रेष्ठ तरीके से उनकी मृत्यु दिलाई और विश्व के लिए एक आदर्श खड़ा किया कि मृत्यु होनी है तो ऐसे होनी चाहिए, मरना कोई अशुभ वस्तु नहीं है, इस तरह से मृत्यु होती है तो मृत्यु भी सर्वश्रेष्ठ और सर्वशुभ है, सर्व पवित्र है, ऐसे मृत्यु हर एक को होनी चाहिए और वैसे होने पर दुख भी नहीं करना चाहिए, इतना बड़ा भाग्य है उसका, वो ऐसा परम भाग्य जो है मृत्यु का वो भगवान ने भीष्मदेव को दिलाया। और वो सुंदर दिन आज का है जिस दिन भगवान ने भीष्मदेव का महानिर्वाण कराया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे परम भागवत भक्त भगवान के भीष्मदेव का चरित्र श्रीमद् भागवत में आता है, संक्षेप में आता है, ज़्यादा विस्तार में तो समय नहीं था उनके पास बताने के लिए, लेकिन इनका चरित्र संक्षेप में क्यों ना हो, भागवत में जोड़ दिया है, क्योंकि भागवत में केवल ऐसे भक्तों का चरित्र है जो परम भागवत है स्वयं, और किसी छोटे मोटे भक्तों का एंट्री नहीं है उसके अंदर, जो जो भी है उसके अंदर वो सब परम भागवत हैं, ध्रुव जी, हाँ प्रहलाद जी, कुंती देवी, परीक्षित महाराज, या तो भगवान है राम जैसे अवतारों का वर्णन है, नरसिंह भगवान, या तो उनके भक्तों का वर्णन है, लेकिन सब परम भागवत हैं। तो उसमें भीष्मदेव का चरित्र प्रथम स्कंद में आता है, भीष्मदेव का महानिर्वाण। तो आप लोगों का अनुरोध है, कभी मौका मिलेगा तो आप महाभारत में अनुशासन पर्व जरूर पढ़ना, उसमें आपको इतने सुंदर उपदेश मिलेंगे अपने जीवन को चलाने के लिए। और भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लेंगे तो फिर भगवान आपको सारी कृपा करेंगे, जैसे भीष्मदेव पर क्रिया। भगवान तो आतुर हैं कृपा करने के लिए, हम लेने के लिए आतुर नहीं है, लेकिन भक्त लोग लेने के लिए आतुर रहते हैं, जो भक्त बनते हैं भगवान का नाम लेते हैं वो आतुर हो जाते हैं, फिर भगवान उनको देने के लिए भी आतुर हो जाते हैं और दे देते हैं, उनको डुबा देते हैं कृपा में और अपने धाम में लेके जाते हैं। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा, बोलो बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।